पेज नंबर 73 पुरुरवा। रक्ष कल्प झिलमिल भावों का, चंद्र लिंग स्वप्नों का, दिवस शत्रु एकांत याम निधात्री है, माता है। आती जब शर्वरी पहुंचती नहीं विश्व के सिर से, केवल तपन चिन्ह केवल लांछन सफेद किरणों के। श्रमहारी निर्मोघ शांतिमय अपने तिमरांचल में, कोलाहल कर्कश निनाद को भी समेट लेती है। शब्दार्थ वृक्षकल्प यानी ग्रह मंडल, चंद्रलिंग यानी चंद्रमा का कलंक धूमिल चंद्रमा, दिवस शत्रु यानी चंद्रमा, धात्री यानी उपमाता या माता, शर्वरी यानी शरद पूर्णिमा की रात, तपन चिन्ह यानी स्वेद कण पसीना, श्रमहारी थकान को दूर करने वाली, तिमिरांचल यानी अंधकार रूपी पर्दा, निनाद यानी आवाज। व्याख्या। चंद्रमा तथा रात्रि की महिमा का गुणगान करते हुए पुरुरवा कहता है, चंद्रमा झिलमिल करते हुए भावों के लिए ग्रहमंडल तथा स्वप्नों के लिए अपने धूमिल स्वरूप के समान है। स्तब्ध रात्रि हमारी संरक्षिका एवं माता रूपा है। जब शारदी निशा आती है तो वह विश्व के प्राणियों के पसीने तथा सफेद किरणों के लगे हुए लांछन को ही नहीं पोंछती, अपितु अपने तिमिरांचल में जो श्रम का हरण करने वाला है, अचूक है तथा शांति प्रदान करने वाला है, संपूर्ण निखिल के कोलाहल भयंकर आवाजों को भी समेट कर रख लेती है। विशेष। इस पद्यांश की प्रथम दो पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है, यह दिन हृदय में झिलमिल करने वाले भावों एवं चंद्रमा के समान मधुर स्वप्नों का शत्रु है, तिमिरांचल में रूपक अलंकार है। तिमिर शांति का व्यूह, तिमिर अंतर मन की आभा है। दिन में अंतरस्थ भावों के बीज बिखर जाते हैं, पर हम चुनकर उन्हें समंजस करते पुनः निशा में, जब आता है अंधकार धरणी अशब्द होती है। शब्दार्थ तिमिर यानी अंधकार, आभा यानी ज्योति, अंतस्थ यानी हृदय में स्थित, समंजस यानी एकत्रित, धरणी यानी पृथ्वी, अशब्द यानी मूक। व्याख्या। अंधकार शांति का व्यूह तथा आंतरिक चित्त को ज्योति प्रदान करने वाला है। हृदय में अवस्थित जिन कोमल भावों के बीज दिन में बिखर जाते हैं, उन्हें हम रात्रि में दोबारा चुन चुन कर एकत्रित करते हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार एक व्यापारी सारे दिन के लेन देन को संध्या के समय अपने बही खाते में अंकित कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य माया मोह में फंसा हुआ होने के कारण दिन में तो अपने भावों को संकलित कर नहीं पाता, मगर संध्या के निस्तब्ध वातावरण में व्यापारी की भांति वह अपने सारे बिखरे हुए भावों को हृदय रूपी बही खाते में लिख लेता है और पुनः उसके फल अफल का लेखा जोखा करता है। अंधकार की मुख्य विशेषता बताते हुए कवि कहता है कि जब अंधकार का आगमन होता है तो सारी धरती मूक हो जाती है, अर्थात ऐसे निस्तब्ध वातावरण में सभी प्राणी बहिर्मुखी प्रवृत्तियों से हटकर अंतर्मुखी हो जाते हैं। जो सपने दिन के प्रकाश में धूमिल हो जाते हैं या अदृश्य अपने सोदर संकोचशील उड़गों से, वही रात आने पर कैसे हमें घेर लेते हैं ज्योतिर्मय जाज्वल्यमान आलोक शिखाएं बनकर। शब्दार्थ धूमिल यानी छिप जाना, सोदर यानी एक उदर से उत्पन्न सगा भाई, उड़ों यानी नक्षत्र तारे, आलोक शिखाएं यानी प्रकाश पुंज। व्याख्या। जो स्वप्न दिवस के प्रकाश में धूमिल हो जाते हैं अथवा अपने ही हृदय से निकले हुए भाव जिनका अस्तित्व पूर्णतः विद्यमान होता है, दिवस में नक्षत्रों की भांति संकोचशील एवं अदृश्य हो जाते हैं, वही भाव रात्रि के अवसर पर ज्योतिमान जाज्वल्यमान प्रकाशपुंज बनकर हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं। निशा योग जागृति का क्षण है और उदग्र प्रणय की अकायनिक समाधि, काल के इसी गरुत के नीचे भूमा के रसपथिक समय का अतिक्रमण करते हैं, योगी बंधे अपार योग में प्रणयी आलिंगन में। शब्दार्थ योग जागृत यानी योग के जागरण अथवा योग द्वारा जागरण, उदग्र यानी उदार उन्नत प्रचंड, अकायनिक यानी एकांत, गरुत यानी पंख निगलना या भक्षण, भूमा यानी आनंदवाद, अतिक्रमण यानी उल्लंघन। प्रसंग, यह पद्यांश काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कवि ने रात्रि के अनंत महत्व को प्रतिपादित किया है। योगी, भोगी और भक्त के लिए नीरव निशावरदान स्वरूप ठोस भित्ति के समान है। सबके चरम लक्ष्य प्राप्ति के ही आधार सूचिका है। व्याख्या, रात्रि में ही योगी योग द्वारा जागरण करते हैं, अर्थात अपनी आत्मा को ऊर्ध्वमुखी करते हैं। यह विह्वल प्रेम की एकांत समाधि है, अर्थात इस क्षण में प्रेमी प्रेम के दिव्यलोक में विचरण करने लगता है। उस समय उसका हर कर्म प्रणय मंदिर के लिए होता है। निशा के इस नीरव वातावरण में भूमा के अनुकर्ता काल के इस गरुत के नीचे बैठकर भी समय का अतिक्रमण कर जाते हैं। भाव यह है कि भूमा का आनंदवादी साधक इस समय वर्तमान, भूत और भविष्यत की सीमा को लांघकर असीम प्रदेश में विचरण करने लगता है, जहाँ परिशुद्ध आनंद तथा समरसता के अतिरिक्त उसे कुछ भी दृष्टिगत नहीं होता। इस नीरव निशा में योगी अपने अपार योग में तथा प्रेमी परस्पर आलिंगन पाश में बंधे रहते हैं। विशेष, इस पद में तीन वाक्यांश दर्शनीय हैं। अ, निशा योग्य जागृति का क्षण है। ब, प्रणय की अकायनिक समाधि। म, भूमा के रसपथिक। इन तीनों वाक्यांशों की समीचीन व्याख्या आवश्यक है। योगी लोग रात्रि को ही अपने योग मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि योग साधना के लिए साधक को कोलाहल से दूर एकांत स्थान का चयन करना पड़ता है, जहाँ केवल नीरवता का ही साम्राज्य हो। रात्रि में यह नीरवता अपने सहज, स्वाभाविक एवं निश्चल रूप में आ जाती है। इस समय जड़ चेतन की संगीतमय निश्वासों की ध्वनि के अतिरिक्त कुछ भी श्रवणीय नहीं होता। अतः भगवान कृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता के दूसरे अध्याय में इसी भाव का, या निशा सर्वभूतानांग तस्यांग जागति संयमी, प्रणय की एकायनिक समाधि भी ब्रह्मानंद सहोदर होती है। अपने प्रिय के आत्म साक्षात्कार के पश्चात ही इस सहज समाधि का उदय होता है। इस अवस्था में भक्त को स्थावर तथा जंगम सभी में उसी का रूप दिखता है और अपने द्वारा किए गए सभी कर्म उसको समर्पित होते हैं। कबीर के निम्न पद में एकायनिक समाधि के निश्चल भाव सहज रूप प्रकट किए गए हैं। साधो सहज समाधि भली, जह जह जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सुसेवा, जब सोऊं तो करूं दंडवत ध्यावहूं और न देवा। अंतिम वाक्यांश है भूमा के रसपथिक। भूमा आनंद और आनंद परब्रह्म का वाचक है। इसकी परिभाषा इस प्रकार की गई है, रसो वयसः रस ह्वेवायं लब्ध्वानंदो भवति एष ह्वेवानंदयति तैतरीय उपनिषद, अर्थात वह रस ही है। इस रस को पाकर पुरुष आनंदी हो जाता है, वह रस सबको आनंदित करता है। समतामयी उदार शीतलांचल जब फैलाती है, जाते भूल नृपति मुकुटों को, वंद निज कणियों को, जगे जग भर की चेतना एक होकर अशब्द बहती है, किसी अनिर्वचनीय सुखद माया के महावरण में। शब्दार्थ, अशब्द यानी मौन, महावरण यानी गहन पर्दा। व्याख्या, जब रात्रि भेदभाव को भूल कर एवं उदार मना बनकर अपना शीतल अंचल फैलाती है, तो राजा अपने मुकुट तथा बंदी अपनी काल कोठरी की कड़ियों को भूल जाते हैं। भाव यह है कि निशा माँ की गोद में आकर राजा अपने आप को राजा नहीं समझता और बंदी अपने आप को बंदी नहीं मानता। उसके शीतल आंचल में मुख छिपाने पर वे अपनी सभी तुच्छ भावनाओं को भूल जाते हैं। उस समय संपूर्ण जगत की चेतना किसी अनिर्वचनीय सुखद माया के गहन आवरण में मौन होकर बहती है। साम्राज्ञी विभ्राट कभी जाते इसको देखा है, समारोह प्रांगण में पहने हुए दुकुल तिमिर का, नक्षत्रों से खचित कूल कीलित झालरें विभाकी, गूंथे हुए चिकुर में सुरभित दाम श्वेत फूलों के। शब्दार्थ, साम्राज्ञी यानी महारानी, विभ्राट यानी ज्ञान मंडल से प्रकाशित, बृहद हिंद कोश में इसका अर्थ बखेड़ा, गड़बड़ी तथा आफत दे रखा है, मगर यह शब्द सम्राज्ञी के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है, अतः यहाँ पर इसका अर्थ होगा अलंकार से दीप्त। दुकूल वस्त्र दुपट्टा, कूल किलित यानी किनारों पर जड़ी हुई, चिकुर यानी बाल, दाम यानी माला या लड़ी। प्रसंग, कविवर दिनकर ने इस पद में रात्रि का अलंकारों से दीप्त मनोरम नारी के रूप में मानवीकरण किया है। व्याख्या, पुरुरवा उर्वशी से कहता है कि क्या कभी तुमने अलंकारों आभूषणों से दीप्त ऐसी साम्राज्ञी को समारोह प्रांगण में जाते हुए देखा है, जो ऐसे श्याम वस्त्रों से आभूषित है जिन पर तारे शोभित हैं, दामन की झालर विवाह से गुंफित हैं और जिसकी अलकावली में श्वेत एवं सुरभित पुष्पों की लड़ियां शोभायमान हो रही हैं। विशेष सांगरूपक अलंकार। और सुना है वह अस्फुट मरमर कौशेय वसन का, जो उठता है मणिमय अलिंद या नभ के प्राचीरों पर मुक्ताभर लंबित दुकूल के मंद मंद घर्षण से, राज्ञी जब गर्वित गत से ज्योतिर्विहार करती है। शब्दार्थ अस्फुट यानी अस्पष्ट, कौशेय वसन यानी रेशमी वस्त्र, अलिंद यानी महल का छज्जा, प्राचीर यानी दीवार, लंबित यानी लटके हुए। व्याख्या। जब निशारूपी रानी गर्वित गति से उज्ज्वल चांदनी में विहार करने के लिए निकलती है, तब क्या कभी तुमने लटकते हुए रेशमी दुपट्टे के मंद मंद घर्षण से उत्पन्न अस्पष्ट लेकिन संगीतमय ध्वनि सुनी है? यह आंचल ऐसा है कि कभी मणिमय छज्जे पर से तथा कभी मोतियों से खचित आकाश रूपी दीवार पर से उठता हुआ दृष्टिगत होता है। विशेष इस पद की अंतिम पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि कवि ने निशा रूपी नारी को रूप गर्विता नायिका के रूप में प्रदर्शित किया है। निशा शांति का क्रोड़, किंतु यह सुरभित स्फटिक भवन में तब भी कोई गीत ज्योति से मिला हुआ चलता है। यह क्या है कौमुदी या कि तारे गुनगुन गाते हैं, दृश्य श्रव्य बनकर अथवा श्रुतियों में समा रहा है। बजती है रागनी सुप्त सुंदरता की सांसों की, या अपूर्व कविता चिर विस्मृत किसी पुरातन कवि की गूंज रही निस्तब्ध निशा में निकल काल गहवर से। शब्दार्थ प्रोड़ यानी घोंसला, स्फटिक भवन यानी श्वेत संगमरमर रूपी महल, ज्योति चंद्रमा की किरणें, कौमुदी चांदनी, दृश्य श्रव्य ये काव्य शास्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं, जिसे नेत्रेंद्रिय द्वारा देखकर आनंद का उपभोग किया जाए, उसे दृश्य तथा श्रोत्रेंद्रिय द्वारा आनंद ग्रहण करने की अवस्था में श्रव्य होता है। श्रुतियों यानी कानों, सुंदरता यानी सुंदर सौंदर्य, यहाँ कवि ने सुंदरता के अमूर्त रूप को रूप प्रदान करने में सफल प्रयास किया है। प्रसाद जी ने कामायनी में स्थान स्थान पर अमूर्त भावों का मूर्तिकरण किया है, जैसे लज्जा में मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। चिर विस्मृत यानी अनंत काल में भुलाए हुए, पुरातन यानी प्राचीन, काल गहवर यानी काल रूपी गुफा से। व्याख्या। निशा शांति की नीर है, इसकी गोद में आश्रय लेने पर किसी प्रकार की अशांति हृदय में के आंगन में शोर नहीं करती, लेकिन फिर भी इस सुरभित संगमरमर रूपी भवन प्रकृति जिसका अणु अणु चांदनी से आवृत है में कोई गीत चंद्रमा की किरणों के साथ साथ आगे चलता हुआ दीख पड़ता है। यह गीत कहाँ से आया, इसे कौन गाता है, इन सब की एक विशाल कल्पना करते हुए पुरुरवा कहता है कि या तो स्वयं चांदनी ही गीत गाते हुए विचरण कर रही है, अथवा तारों द्वारा गाए गए मधुर गान को चांदनी अपनी किरणों के झूले पर सैर करा रही है, अथवा यह किसी सोई हुई सुंदर रमणी जो सुंदरता का ही प्रतिरूप है को निश्वासों से ध्वनित होने वाली मधुर रागनी है जो दृश्य अथवा श्रव्य बनकर कानों में समा रही है। अंत में कवि एक बहुत ही अपूर्व कल्पना करता है, उसका कहना है कि अन्यथा यह लंबी अवधि से भुला दिए जाने वाली किसी प्राचीन कवि की कविता है जो भूतकाल रूपी गहन गुफा से निकलकर इस निस्तब्ध रात्रि में गुंजारित हो रही है। विशेष कौमुदी तथा सुंदरता आदि अमूर्त भावों का मूर्तिकरण किया गया है। यह अगाध सुषमा अनंतता की प्रशांत धारा में लगता है निश्चेत कहीं हम बहे चले जाते हैं। शब्दार्थ निश्चेत यानी अचेतन। व्याख्या। पुरुरवा उर्वशी से कहता है इस समय प्रकृति की यह सुषमा अगाध और अनंत है, जिसकी प्रशांत धारा में हम अपनी चेतना को भूल कर अज्ञात दिशा की ओर बहे चले जा रहे हैं। उर्वशी। अतल अनादि अनंत पूर्ण बृहत अपार अंबर में सीमा खींचे कहाँ, निमिष पल दिवस मास संवत्सर महाकाश में टंगे काल के लक तक से लगते हैं। प्रिय, उस पत्रक को समेट लो जिसमें समय सनातन क्षण मुहूर्त संवत शताब्दी की बूंदों में अंकित है, बहने दो निश्चेत शांति की अकूल धारा में, देश काल से परे छूटकर अपने ही हाथों से। किस समाधि का शिखर चेतना जिस पर ठहर गई है, उड़ता है यह विशिख अंबर में स्थिर समान लगता है। शब्दार्थ, बृहत यानी परिवर्धित, निमिष यानी क्षण, संवत्सर यानी साल, पत्रक यानी पत्ता, लक्तक यानी लता या चिथड़ा, सनातन यानी शाश्वत, निश्चेत यानी चेतना रहित, अकूल यानी कूल अथवा तट से रहित। प्रसंग, पूर्व पद की अंतिम पंक्ति में पुरुर्वा ने उर्वशी से प्रश्न किया था कि हम दोनों अपनी चेतना को भूलकर कहाँ बहे जा रहे हैं। ये पंक्तियाँ प्रश्न का ठोस उत्तर देती हैं। उर्वशी का कथन है कि प्रेम की ऐसी उन्मुक्त अवस्था में प्रेमी तथा प्रेमिका देश काल की सीमा से परे हृदयाकाश के ऐसे लोक में पहुँच जाते हैं जहाँ भावना स्थिर हो जाती है। यह अवस्था सहज समाधि की है, जिसमें साधक अपने लक्ष्य को पाकर उसी को अपना आत्मसमर्पण करके निर्द्वंद हो जाता है। व्याख्या, यह हृदय रूपी आकाश अतल अनादि अनंत पूर्ण एवं परिवर्तित है। इसमें किसी प्रकार की सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। इस महाकाश में क्षण पल दिन मास तथा वर्ष ऐसे लगते हैं जैसे काल के चिथड़े लटक रहे हैं। हे प्रिय, तुम अपने हृदय रूपी पत्र को समेट लो जिसमें तुमने शाश्वत समय को पल घड़ी वर्ष तथा शताब्दी की बूंदों में अंकित कर रखा है। भाव यह है कि यदि देश काल के ही चौखटे में हम बंधे रहे तो भला हम प्रेम की सहज पृष्ठभूमि पर कैसे पहुंच सकते हैं। अतः देश काल से परे हटकर चेतना रहित होकर शांति के इस अकूल प्रवाह को बहने दो। इस शांति की पीयूष धारा को काल रूपी अपने हाथों में बांध कर मत रखो। पुरुर्वा के प्रश्न का उत्तर देते देते उर्वशी प्रेम के ऐसे अनंत शिखर पर पहुंच जाती है जहां पर शरीरगत सभी क्रियाएं शून्य हो जाती हैं। अतः उर्वशी कहती है, यह कौन सी समाधि को तुंग श्रृंग है जिस पर अवस्थित होकर चेतना ने अपनी संज्ञा लुप्त कर दी और प्रेम का जो बाण हृदय के इस अंबर में ऊर्जस्वित गति से उड़ता चला जा रहा था वह ऐसा लग रहा है जैसे स्थिर सा हो गया है। विशेष भाव यह है कि प्रेम में एक अवस्था ऐसी भी होती है जब चेतना निष्पंद एवं संज्ञाहीन हो जाती है। इस अवस्था में जाति समाज या देशगत रूढ़ियाँ अथवा परंपराएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं और जीव बावरा बनकर उसी महाशून्य में अपने अंश को मिला देता है। अलंकार, लक्तक से में उपमा अलंकार है। पुरुर्वा, रुको समय सरिते पल अनुपल काल शकल घटिकाओ, इस प्रकार आतुर उड़ान भर कहाँ तुम्हें जाना है। कहीं समापन नहीं ऊर्ध्वगामी जीवन की गति का, काल पयोनिधिका त्रिकाल में कोई कूल नहीं है। कहीं कुंडली मार बैठ जाओ नक्षत्र निलय में, मत ले जाओ खींच निशा को आज सूर्य वेदी पर। शब्दार्थ, समय सरिते यानी समय रूपी नदी, काल शकल यानी काल रूपी खंड टुकड़ा, घटिकाओं यानी स्वयं वह यंत्र। प्राचीन काल में एक छोटा सा घड़ा होता था जिसमें दिन की घड़ियां मालूम की जाती थी। आतुर यानी व्यग्र, समापन यानी समाप्त, नक्षत्र निलय यानी नक्षत्र रूपी घर या गोद में। प्रसंग, पुरुर्वा के लिए आज की रात कत्ल की रात है। वह चाहता है कि रात कभी न बीते तथा त्रिकाल वर्तमान भूत तथा भविष्य किसी नक्षत्र लोक में जाकर छिप जाए, क्योंकि प्रातः काल आते ही संसार का कोलाहल प्रारंभ हो जाएगा और चमेली का पुष्प रस मेरे हाथ से जाता रहेगा। व्याख्या, पुरुर्वा कहता है, हे समय सरते, हे कालखंड, हे घटिकाओ, कम से कम पल अथवा अनुपल के लिए तो रुक जाओ। इस प्रकार व्यग्र होकर तुम किस लक्ष्य की ओर जुड़े जा रहे हो। जिस प्रकार ऊर्ध्वगामी जीवन की गति की कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार हे समय, तुम चाहे कहीं तक चलते चलो मगर तुम्हारी कहीं मंजिल नहीं है जहां उतरकर तुम क्षण भर के लिए चैन की श्वास ही ले सको। यही दशा इस प्रेमोन्मुक्त हृदय की है। चाहे वह कितना भी ऊर्ध्वगामी क्यों न हो जाए मगर ऊपर की रिक्तता उसे सताती ही रहती है। यह काल पयोनिधि अनंत है, त्रिकाल वर्तमान भूत और भविष्य में भी उसकी सीमा का अवसान नहीं हो सकता। अतः पुरुर्वा त्रिकाल से करबद्ध याचना करता है, हे त्रिकाल, आज तुम कुंडली मार कर किसी नक्षत्र लोक में जाकर छिपे रहो और इस मधुर रात्रि को सूर्य वेदी पर खींच कर मत ले जाओ। विशेष, समय सरिते काल पयोनिधि तथा नक्षत्र निलय में रूपक अलंकार है। रुको, पान करने दो शीतलता शतपत्र कमल की, एक सघन क्षण में समेटने दो विस्तार समय का, एक पुष्प में भर्तृकाल की सुरभि सूंघ लेने दो। शब्दार्थ, त्रिकाल यानी भूत वर्तमान भविष्य, सुरभि यानी सुगंध। व्याख्या, हे समय सरते पल भर के लिए रुक जा, मुझे इसी शतपत्र कमल यानी उर्वशी की शीतलता, उत्तप्त हृदय को आलिंगन पाश में बंध जाने के उपरांत प्राप्त हुई शीतलता अर्थात शांति का पान करने दो। उर्वशी को कमल की उपमा कवि ने बड़ी सार्थक दी है। एक तो कमल स्वच्छ तथा निर्मल है, दूसरे रात्रि के समय वह बंद होता है। इसी प्रकार उर्वशी का प्रेम भी स्वच्छ तथा निर्मल है एवं इस समय प्रेमी के सामने वह भी लाज मारे कमल की भांति संकुचित सी हो रही होगी, जिससे इसका सौंदर्य द्विगुणित हो उठा है। हे त्रिकाल, इस सघन वृक्ष में मुझे समय का विस्तार समेट लेने दो, अर्थात मैं चाहता हूँ कि इस घोड़े से अमूल्य समय में मैं प्रेमिका से इतना प्रेम रस लूँ कि आगे आने वाले विस्तृत समय पटल पर मैं उसी सघन रस में डूबा रहूँ और मुझे बस इस सघन क्षण के अतिरिक्त अन्य किसी सीमा रेखा का ध्यान न हो। और हे काल शकल, मुझे एक पुरुष हृदय में त्रिकाल की सुरभि भरकर सूंघ लेने दो। भाव वही है कि मैं उर्वशी के पावन प्रेम को अपने हृदय में अवस्थित कर लूं और त्रिकाल तक इसी सुरभि से सुवासित होता रहूं। विशेष अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। मिटा कौन जो बीत गया पीछे की ओर खड़ा है, जन्मा अब तक नहीं अभी वह घन के अंधियाले में बैठा है, सामने छन्न पर सब कुछ देख रहा है। छन्न यानी छुपा हुआ। प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि ने समय को एक चक्र के समान बताया है। व्याख्या, यहाँ पर कौन मिट गया, क्या वह वर्तमान काल जो घटित हो चुका है? नहीं, वह समाप्त नहीं हुआ है। अभी तो मनुष्य के जीवन रूपी रंगमंच पर अपना अभिनय दिखाकर पर्दे के पीछे भविष्य और भूत जाकर खड़ा हो गया है। उसने अभी तक जन्म नहीं लिया है, अपितु वह परिस्थिति रूपी तमस बादलों की ओट में छिपकर बैठा हुआ है, भूत और भविष्य के संपूर्ण अभिनय को देख रहा है और उचित समय पाकर पुनः प्रकट हो जाएगा। जिस प्रकार नगराज जानता व्यथा विंध्य के उरकी और हिमालय की गाथा है विदित महासागर को, वर्तमान त्यों ही अपने गृह में जो कुछ रख करता है, भूत और भवितव्य उभय उस रचना के साथी हैं। शब्दार्थ, नगराज यानी हिमालय, विंध्य यानी विंध्य सागर, उभय यानी दोनों। व्याख्या, जिस प्रकार हिमालय पर्वत विंध्य सागर की मानस पीड़ा को समझता है और विंध्य महासागर की कहानी को जानता है, उसी प्रकार वर्तमान काल द्वारा अपने घर में किए हुए सभी कर्मों को भूत और भविष्य अच्छी तरह जानते हैं और उन दोनों द्वारा किए गए कर्म इस बात के साक्षी हैं कि वर्तमान का सभी लेखा जोखा इनके मानस पर अंकित है। सिंधु विंध हिमवान खड़े हैं दिगायाम में जैसे, एक साथ क्यों काल देवता के महान प्रांगण में, भूत भविष्य वर्तमान सब साथ साथ ठहरे हैं, बातें करते हुए परस्पर गिरा मुक्त भाषा में। शब्दार्थ, दिगायाम दिक धन आयाम यानी फैली हुई दिशाओं में, गिरा मुक्त यानी वाणी से मुक्त होकर अर्थात मौन होकर। व्याख्या, जिस प्रकार सिंधु विंध तथा पर्वत विस्तृत दिशाओं में एक साथ ही अवस्थित रहते हैं और कुछ न कहकर भी अपने हृदय को पीड़ा को व्यक्त कर देते हैं, उसी प्रकार काल देवता के इस महान प्रांगण में भूत वर्तमान और भविष्य गिरा मुक्त यानी मौन भाषा में परस्पर वार्तालाप करते हुए एक साथ ठहरे हुए हैं। कहाँ देश हम नहीं व्योम में जिसके गूंज रहे हैं, कौन कल्प हम नहीं तैरते हैं जिसके सागर में, महाशून्य का उत्स हमारे मन का भी उद्गम है, बहती है चेतना काल के आदि मूल को छूकर। शब्दार्थ, व्योम यानी आकाश, कल्प यानी समय, ब्रह्मा का दिन जिसमें 1000 महायुग अथवा 4,32,00,000,000 मानव वर्ष होते हैं, महाशून्य यानी ब्रह्म, उत्स यानी झरना प्रेम का झरना, उद्गम यानी स्रोत, आदि मूल यानी प्रेम तत्व, प्रेम सृष्टि का आदि तत्व है क्योंकि विधाता प्रेम रूप है और उसने सृष्टि का विकास प्रेम के बीज बोकर ही किया था, अतः प्रत्येक जड़ जंगम में विधाता के आदि मूल प्रेम का अंश विद्यमान है। व्याख्या, त्रिकाल कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा देश है जिसके प्रांगण में हमारी गूंज विद्यमान न हो। ऐसा कौन सा देश है जिसके महासागर में हम नहीं तैर रहे हैं, अर्थात प्रत्येक देश तथा समय में हम सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। महाशून्य के चित्त से जो प्रेम का झरना प्रवाहित होता है वह हमारे मन का भी स्रोत है, अर्थात हमारे अंदर भी उस प्रेम तत्व का अंश विद्यमान है। हमारी चेतना भी काल के आदि मूल प्रेम को छूकर ही बहती है। उर्वशी, हम त्रिलोकवासी त्रिकालचर एकाकार समय से भूत भविष्यत वर्तमान तीनों के एकारणों में तैर रहे, संपृक्त सभी वीचियों कणों अणुओं से समा रही धड़कने उरों की अप्रतिहत त्रिभुवन में काल रंध्र भर रहा हमारी सांसों के सौरभ से। अंतर्नभ का यह प्रसार यह परिधिभंग प्राणों का सुख की इस अपार महिमा को कहाँ समेत धरे हैं। शब्दार्थ, त्रिलोकवासी यानी तीनों लोकों भू आकाश और पाताल में निवास करने वाले, त्रिकालचर यानी तीनों काल भूत भविष्य और वर्तमान में विचरण करने वाले, एकारणव यानी एक समुद्र में, संपृक्त यानी एक साथ, वीचियों यानी लहरों, अप्रतिहत यानी अबाधित अपराजित अक्षुण्य जिसकी गति किसी प्रकार भी रोकी न जा सके, काल रंध्र यानी काल के छिद्र, अंतर्णव यानी सूक्ष्म आंतरिक हृदय आकाश, परिधिभंग सीमा का भंजन करने वाला। व्याख्या, प्रेम व्यापक रूप धारण करने पर देश काल की सीमाओं को तोड़कर सृष्टि के अणु अणु में व्याप्त हो जाता है। इस भाव की पुष्टि करते हुए उर्वशी कहती है, प्रेम की इस अवस्था में हम दोनों त्रिलोकवासी तथा त्रिकालचर हैं। काल भेद को परे हटाकर हम भूत भविष्य और वर्तमान के एक ही समुद्र की प्रत्येक लहर में, उसकी हर बूंद तथा बूंद के ही प्रत्येक अंश में एक साथ तैर रहे हैं तथा उनमें समाये हुए हैं। हमारे हृदय की धड़कन अबाध गति से तीनों लोकों में समाई हुई तथा हमारी उत्तप्त श्वासों से निःसृत मदमस्त सौरभ प्रत्येक काल के रंध्रों में आपूर्यमान है। उर्वशी पुरुर्वा से प्रश्न करती है कि प्राणों की सीमा को भंग करके हमारे चित्त में अनुस्यूत जिस प्रेम तत्व का यह प्रसरण हुआ है और जिसके कारण अपार महिमाशाली सुख सृष्टि के अणु अणु में फैल रहा है, उसे हम कहाँ पर समेट कर रखें। विशेष इस पद्यांश में प्रतिबिंबवाद की झलक है। प्रतिबिंबवाद के अनुसार जीव के हृदय स्थित भाव चित्त की विशलता के उपरांत सृष्टि के जड़ चेतन, स्थावर जंगम, परलोक लोक तथा बाहर भीतर सब में उसका यही भाव प्रतिबिंबित होता है। पुरुर्वा, महाशून्य के अंतर्गृह में उस अद्वैत भवन में जहाँ पहुँच दिक्काल एक है, कोई भेद नहीं है, इस निरभ्र नीलांतरिक्ष की निर्झर मंजूषा में सर्ग प्रलय के पुरा वृत्त जिसमें समग्र संचित हैं। शब्दार्थ, महाशून्य यानी ब्रह्म, अंतर्गृह यानी ब्रह्मलोक, दिक्काल यानी दिशाकाल, निरभ्र यानी बादलों से रहित स्वच्छ निर्मल, नीलांतरिक्ष यानी नीला अंतरिक्ष अर्थात आकाश, निर्जर यानी जरा रहित, मंजूषा यानी पिटारी, सर्ग प्रलय यानी सृष्टि की प्रलय, पुरावृत पुराने आख्यान, समग्र यानी सारे प्रसंग। पूर्व पद में उर्वशी ने यह प्रश्न उठाया था कि सृष्टि के अंश में हमारे प्रेम का जो स्वरूप आच्छादित एवं व्याप्त है, उसे हम कहाँ पर समेट कर रखेंगे। आने वाले इस पद में पुरुर्वा ने इसका समुचित उत्तर दिया है। व्याख्या, सुख की इस अपार महिमा को ब्रह्मलोक के उस अद्वैत भवन में रखा जा सकता है जहाँ पहुँचकर दिशा तथा काल का भेद नहीं है और इस निरभ्र नीलांतरिक्ष की जरा रहित पिटारी में सृष्टि प्रलय के सही पुराने आख्यान संचित हैं। दूरागत इस सतत संचरणमय समीर के कर्मे कथा आदि की जिसे संत की श्रुति तक ले जाना है। शब्दार्थ, दूरागत यानी दूर से आई हुई, सतत संचरणमय यानी निरंतर प्रवाहित होने वाली, समीर यानी वायु, कथा आदि की यानी प्रेम कथा, ब्रह्म प्रेम स्वरूप है। आपने प्रेम के बीज से ब्रह्म ने अपने प्रेम के बीज से ब्रह्म ने इस जगत की सृष्टि की है। श्रुति यानी कान। व्याख्या, दूर से आ रही उस निरंतर प्रवाहित होने वाली वायु के साथ प्रसरण होने वाली जो आदि प्रेम कथा है, उसे सृष्टि के अंत तक हमें ले जाना है। विशेष भाव यह है कि हमारे प्रेम का आख्यान इतना महत्वपूर्ण हो जाना चाहिए कि देश काल की सीमा को छोड़कर वायु की भांति सर्व प्राण जगत में छा जाए और हमारी प्रेम कथा जब तक जीवित रहे, जब तक यह सृष्टि विद्यमान है। इस प्रदीप्त निष्के अंचल में जो आप्रलय निरंतर इस भांति सुनती जाएगी कूजन गूढ़ प्रणय का अदृश्य। व्याख्या: प्रलय होने तक यह सृष्टि इस चांदनी रात की गोद में बैठकर इसी भांति हमारे रहस्यमय प्रेम का गुंजन सुनती रहेगी। उस अदृश्य के पद पर जिसकी दया सिक्त मृदु स्मित में हम दोनों घूमते और क्रीड़ा विहार करते हैं। अदृश्य यानी ब्रह्म। हमारा यह प्रेम किसी नए मार्ग का अनुसंधान नहीं है, हम तो उस आदेश्वर के आदि प्रेम मार्ग का ही अनुवर्तन कर रहे हैं। उसी के दयासिक्त मृदु मुस्कान के प्रकाश में हम दोनों घूम घूम कर प्रेम का विहार कर रहे हैं। जिसकी इच्छा का प्रसार भूतल पाताल गगन है, दौड़ रहे नवमे अनंत कंदुक जिसकी लीला के अगणित सविता सोम अपरिमित ग्रह उड़मंडल बनकर नारी बन जो स्वयं पुरुष को उद्वेलित करता है और वेधता पुरुष कांति बन हृदय पुष्प नारी का। शब्दार्थ कंदुक यानी गेंद, यहाँ प्राणी से तात्पर्य है। सविता सोम यानी सूर्य और चंद्रमा, अपरिमित यानी असंख्य, उड़मंडल यानी नक्षत्र मंडल तारे। प्रसंग: इन पंक्तियों में कवि ने सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बताया है। व्याख्या: भूतल और पाताल और गगन उस ब्रह्म की इच्छा का ही विकसित रूप है। आकाश लोक में अगणित सूर्य चंद्र ग्रह मंडल तथा नक्षत्र रूपी कंदुक परिलक्षित हो रहे हैं, वे सब अनंत की लीला का प्रसार है। नारी और पुरुष की सृष्टि भी परब्रह्म ने अपनी लीला के लिए की है। नारी का रूप धारण करके वह पुरुष के चित्त को